ధ్యేయం సదా పరిభవఘ్నమభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివవిరించినుతం శరణ్యం భృత్యార్తిహం ప్రణతపాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః అతులిత బలధామం హేమశైలాభుదేహం దనుజవన కృషాను జ్ఞానినామగ్రగణ్యం సకలగుణనిధానం వానరాణామధీశం రఘుపతి ప్రియభక్తం వాత్జాతం నమామి కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. అనంతానంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయక్ సచ్చిదానంద ఘన్ ఆనంద కంద్ లోకాభిరామ్ నయనాభిరామ్ అకామకామ్ భగవాన్ శ్రీరామ్ కే పావన్ శ్రీ చరణార్ విందో మే కోటి కోటి భక్తజనో కి ఓర్ సే కోటి కోటి శహ సాదర ప్రణామ్. భగవత్ పార్షద్ భూత్ శ్రీ హనుమాన్ జీ మహారాజ్ కే పావన్ చరణో మే సభీ భక్తజనో కా కోటి కోటి శహ సాదర శ్రద్ధా సుమన్ అర్పిత్. భగవత్ ప్రియ సమస్త సంత మహాపురుషో కే చరణో మే సభీ భగవత్ ప్రియ సజ్జనో కా మాతాఓ బహనో కా హార్దిక్ అభినందన్. అధ్యాత్మ రామాయణ కా నావాన్నిక అనుష్ఠాన్ కా ఆజ్ దూసరా దిన్ హై. అధ్యాత్మ రామాయణ కు వేదవ్యాస్ జీ మహారాజ్ నే ఇతనే జల్దీ జల్దీ లిఖా హై, కుచ్ జ్యో ఆతే గయా లిఖతే గయే ఇతనీ సరల్ సంస్కృత హై కి సామాన్య జ్ఞాన్ రఖనే వాలా భీ ఉసే ఖూబ్ ఆరామ్ సే సమజ్ సక్తా హై. పరంతు అధ్యాత్మ కి బాతే ఇతనీ గహరీ హై कि अध्यात्म रामायण उसी के कारण से प्रसिद्ध हुआ है. अध्यात्म रामायण को पुराण का दर्जा मिला है, यद्यपि ये पुराण का अंश है, परंतु भगवान की विलक्षण कथा होने से ये पुराण ही कहलाता है. जैसे हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा नदी बहती है, परंतु एक छोटी सी शीशिका में जल है तो लोग कहेंगे ये गंगा जल है, ये गंगा जी है। तो हिमालय से गंगा सागर तक गंगा की जो पवित्रता है वो पवित्रता छोटी सी शीशी के गंगा जल में भी है। इसी प्रकार से ये अध्यात्म रामायण पुराण का एक अंश है, लेकिन ये पुराण है। हमारे व्यास जी महाराज ने अपने लिखने में इतनी सावधानी रखी है कि जहां ज्ञान का प्रसंग चलेगा उस समय में उस ज्ञान के प्रसंग को जब पूरा उठाया है तो उसको पूरा ही समाप्त करते हैं। जहां से प्रश्न किया उसको कहीं अधूरा नहीं छोड़ा है। और जो कथा भाग है उसको बहुत संक्षेप में कहते हैं, और रामायण में संवाद बहुत विलक्षण है। इसमें संवाद यदि थोड़े बहुत आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान में चले जाते हैं। केवल कथा प्रिय सज्जनों को प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कथा हम जानते ही हैं, परंतु इतना होते हुए भी इस कथा के अंदर कथा भाग का कोई अंश नहीं छोड़ा है। गोस्वामी जी महाराज अध्यात्म रामायण से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए अध्यात्म रामायण के उपदेश को उन्होंने उत्तरकांड में तो विस्तार से कहा ही है। जहां जहां आवश्यकता हुई वहां वहां वो बीच बीच में भी उपदेश की बात कहना भूले नहीं। कई कई जगह तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अध्यात्म रामायण का ये ज्यों का त्यों भाव लिया है। इतना गोस्वामी जी महाराज को अध्यात्म रामायण ने ज्ञान दिया है। भागवत का भी अंश लिया है उन्होंने, परंतु राम कथा गोस्वामी जी लिख रहे हैं इसलिए व्यास जी की वाणी में कुछ तरीका उन्होंने भागवत का लेते हुए भी अध्यात्म रामायण का तो बहुत ज्यादा अपने साथ में संबंध रखा है। कलिकाल के अंदर अध्यात्म रामायण सुनने का मौका बहुत कम भाग्यशालियों को मिलता है। इसके कई कारण हैं। एक तो अध्यात्म रामायण को कोई पढ़ता भी नहीं है तो आम जनता में इसका प्रचार कम हुआ, क्योंकि व्यास जी महाराज ने भागवत को लिख दिया, भागवत है दूसरे पुराण है, उनकी प्रसिद्धि अध्यात्म रामायण की अपेक्षा ज्यादा हुई। और गोस्वामी जी महाराज ने सरल हिंदी भाषा में लिख दिया रामचरित्र, तो उससे और की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। परंतु जैसे घट और कलश दोनों पर्यायवाची शब्द होते हुए भी घट घट ही है और कलश कलश ही है, ऐसे ही राम कथाओं में कितनी भी समानता हो लेकिन फिर भी अपनी अपनी कुछ विचित्र विशेषताएं विभूतियां रहती हैं। अध्यात्म रामायण की क्या कोई विशेषता कहे? अध्यात्म रामायण की इतनी ज्यादा आकर्षक शैली है, कभी कभी तो हमारे व्यास जी महाराज ऊपर का श्लोक है पूर्ण विराम दे दिया लेकिन उसका अर्थ दूसरे के साथ आए बिना वो बैठता ही नहीं है, ऐसी विचित्र बात है। श्लोकांक के अंदर भी हमारे व्यास जी महाराज ने यूं चला लिखते गए, दो श्लोक एक श्लोक का यूं नंबर देते गए, आगे जाके देख रहे उसका तो नंबर यहां पूरा होता ही नहीं है, श्लोक के अंदर एक बात पूरी हो जानी चाहिए वो पूरी नहीं होती, इतने भाव में डूब गए। बहुत विचित्र शैली है। और भगवान शंकर के मुख से ये कथा कहलवाई है। गोस्वामी जी ने इस बात को बहुत आदर दिया है कि शंकर जी के द्वारा भगवान राम की कथा कहलाई जाए। और पार्वती जी पूछती है, देखिए पार्वती जी जो पूछती है तो एक बार पूछ लिया बस, यहां पार्वती जी बीच में कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करती, ये बात हुई तो ऐसा क्यों। वो जानते हैं कि हमारे भगवान शंकर जो बोल रहे हैं वो इस ढंग से बोल रहे हैं कि वहां प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही वास्तव में वक्ता का वक्तृत्व होता है, वो साकांक्ष नहीं बोलता, वो निराकांक्ष बोलता है। साकांक्ष माने अधूरी बात कहे तब लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका उत्तर नहीं मिलता है, वो साकांक्ष वाक्य होता है। साकांक्ष वाक्य का महत्व नहीं होता, निराकांक्ष वाक्य का महत्व होता है। अर्थात इस ढंग से बात कहे कि श्रोता को फिर वो बात कहीं संदेह में दिखे ही नहीं, उसका शंकाओं का समाधान होता चला जाए। अपना प्रसंग भगवान श्री राम का विवाह हो गया, साथ में तीनों भाइयों का भी, जनक जी के खुद की पुत्री और अपने भाई की पुत्री के साथ विवाह हो गया। उसके पश्चात वे जनकपुर से रवाना होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करते समय बीच में घनघोर जंगल के अंदर उनको बड़े भारी अपशकुन दिखाई दिए, तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आंधी सी आ रही है और हवा भी प्रतिकूल चल रही है, जिन हिरणों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए था वो प्रतिकूल चल रहे हैं, जिन पक्षियों को दाहिनी ओर आना था वो बाईं ओर आ रहे हैं, बड़ा भारी अपशकुन हो रहा है, ये आंधी सी आ रही क्या बात है, मेरा मन कुछ घबरा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भय तो लग रहा है लेकिन साथ साथ में कुछ शकुन ऐसे भी हो रहे हैं कि जिससे आगे अपना भय मिटने वाला भी है। ये देखो ये हिरण अभी हमारे बाई ओर चल रहे थे, अकस्मात अपनी दिशा बदल करके दाहिनी ओर चल रहे, ठीक हो रहा है, अब कुछ शुभ सूचना मिल रही है, तो मिश्रित शकुन हो रहा है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है कुछ अच्छा भी हो रहा है, क्या हो रहा, ऐसी ये बातें हो रही थी। जोर से आंधी आई, सबकी आंखें बंद हो गई, अब रास्ता उनको दिखे नहीं। इतने में ही आंधी ठहर गई, सबने आंख खोल करके देखा तो भाई आगे परशुराम जी महाराज खड़े। परशुराम जी महाराज करोड़ों सूर्य के समान जगमगाने वाले और बिजली के समान उनकी जो दृष्टि प्रभा, उनका तेज, जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी को देख करके हमारे दशरथ जी महाराज बड़े थर थर कांपने लगे, जाकर उनको प्रणाम किया। अब वो परशुराम जी महाराज नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, क्षत्रियों का नाश करने वाले, वे परशुराम जी महाराज सीधे दशरथ जी के सामने खड़े हुए। दशरथ जी महाराज ने माला पहनाई, पूजन किया और त्राई माम कहा, महाराज रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इतने घूर घूर के क्यों देख रहे हो महाराज, मैंने तो आपका कभी कोई अपराध किया नहीं, और जिस काल के क्षत्रियों का आपने नाश किया है उस काल में तो मैं था भी नहीं, मैं तो इस काल का क्षत्रिय हूं, इस काल के क्षत्रियों का तो आपने नाश किया नहीं, बहुत पहले आपने नाश किया था। और कहा कि देखो आप इतना क्रोध करते हो, हमें बड़ा डर लगता है, हमें प्राण दान दीजिए और पुत्र प्राणम प्रयच्छमे, राम की तरफ आप ज्यादा घूर के देख रहे हो, मेरे पुत्र राम के भी प्राण बचाओ महाराज। लेकिन राजा की विनती का परशुराम जी पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसे गरम गरम तवे पर कोई पानी छिड़कता हो तो उस छांटे का गरम तवे पर क्या असर हो, पानी डाल दो छन करके वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दशरथ जी की दीन वाणी परशुराम जी के क्रोध के अंदर वो तो एकदम खत्म हो गई और वो तो राम की तरफ घूर घूर के देखने लगे परशुराम जी। अब आप कहेंगे कि देखो परशुराम जी रामचरितमानस में तो जनक जी की सभा में आए और यहां आप मार्ग की बात बोलते हो, तो दोनों में से कौन सा सही है बताया ना, दोनों ही सही है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, राम अनंत अनंत गुण अनंत कथा विस्तार। भगवान अनंत अवतार लिए, भगवान ने अनंत वार अवतार लिया, राम अनंत अनंत कथा, कथाओं भी एक जैसी थोड़ी होगी, अनंत एक जैसी कथा होगी तो क्यों लिखेगा कोई, एक जैसी कथा नहीं, कथाओं में भी भेद आता है। राम अनंत अनंत गुण अनंत कथा विस्तार। इसलिए यहां जंगल के अंदर राम जी महाराज से परशुराम जी का संवाद होता है, यहां लक्ष्मण जी का कोई लेना देना नहीं। परशुराम जी कहे त्वम राम, अरे तू राम है, दशरथ का बेटा, तू जनक के आ गया, एक क्षत्रिय आदम, तूने मुझे समझा नहीं कि मैं कौन हूं, आज तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहता हूं, यदि तुम क्षत्रिय हो तो मेरे से युद्ध करोगे। एक पुराने धनुष को तोड़ देने के कारण तुम अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानने लग गए क्या, यदि ऐसी बात है तो ये लो मेरा वैष्णव धनुष और इसके ऊपर चढ़ाओ बाण, धनुष मेरा खोला हुआ है, ये धनुष खोला हुआ है, इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर फिर बाण चढ़ाओ, देखे मैं समझूंगा तुम कुछ हो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूं। खूब जोर जोर से बोले, राम जी सुनते रहे चुपचाप। जिस समय परशुराम जी क्रोध कर रहे थे उस समय पृथ्वी चंचल हो गई, हाहाकार मच गया, जितने वहां पर सर्वेशाम अपि चक्षुषाम, सब जो देखने वाले थे उन देखने वालों का हृदय कांपने लग गया, अंधकारों भगवान ने उसी समय में परशुराम जी का जो वैष्णव धनुष था उस धनुष को ले लिया, गिलाओ यूं ले लिया है, आछिद्य छीन करके लिया। और तुलसीदास जी महाराज ने मालूम है कितना सुंदर वर्णन किया है कि वो धनुष था वो आप ही चली गए हुई, जैसे आप हम चलते हैं ना ऐसे वो धनुष अपने आप ही जो है भगवान के पास चला गया। भक्त हृदय है गोस्वामी जी महाराज और व्यास जी महाराज है, ये उस समय की विलक्षण कथा को बोल रहे हैं। तो देखो एक ये इसमें एक बात क्या है, यहां बात ऐसी है कि शैव और वैष्णवों का समन्वय करवाने में लगे हैं। भगवान राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ना ये कहीं शैवों को बुरा न लगे, और भगवान परशुराम के द्वारा शिव धनुष टूटने पर क्रोध करना ये शैवों को अच्छा लगे, क्योंकि परशुराम जी भी तो विष्णु अवतार है ना, राम जी भी विष्णु अवतार तो परशुराम जी भी विष्णु अवतार, तो कहीं पर भी शिव जी का कोई अपमान न समझ ले, इसलिए व्यास जी महाराज ने और तो जो है तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, तरीका अलग अलग है, लक्ष्य दोनों का एक ही है। भगवान ने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण उसके ऊपर रखा और बाण रख करके और कहा कि बोलिए परशुराम जी महाराज, लक्ष्यम दर्शय, आप लक्ष्य को बताइए किस लक्ष्य पर ये बाण छोड़ा जाए, मेरा बाण व्यर्थ तो जाएगा नहीं, बोलिए कहां बाण चलाऊं, आपके दोनों पैरों में बाण चलाऊं या आपने तपस्या से जिन लोकों के ऊपर विजय प्राप्त की है उन लोकों को ध्वस्त करूं, बताइए कहां बाण छोड़ना है। अयम लोक है परो वाथ त्वया गंतुम न शक्यते, यदि हम आपके पैर काट देते तो आप यहां से इस जगह से कहीं हिल नहीं सकेंगे, और यदि मैं आपके लोकों का नाश करता हूं तो आप किसी लोक में नहीं जा पाओगे, बोलिए क्या करना है, मुझे जल्दी आज्ञा दीजिए। जब भगवान इस प्रकार से क्रोध में बोलने लगे तो फिर परशुराम जी महाराज समझ गए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। संस्मरण पूर्व वृत्तांतम, सब वृत्तांत समझ करके बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े, जिस चेहरे पर खूब क्रोध छाया हुआ था उसी चेहरे पर बड़ी नम्रता बड़ी प्रसन्नता छाई हुई, कहने लगे हे राम, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, पुराण पुरुष हो, जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का संहार आप चुटकी में कर देने वाले हो। मैं जब बच्चा था तब मैंने भगवान विष्णु की आराधना की थी, मैं चक्रतीर्थ चला गया था, वहां के जंगलों में रहकर मैंने भगवान विष्णु की बड़ी विलक्षण आराधना की थी, उस तपस्या से भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए, मेरे सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर मुझे कहने लगे कि परशुराम उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारी अभी संसार में बड़ी जरूरत है, ये हाय हाय कुल है, इस हाय हाय कुल के अंदर बड़े दुष्ट राजा लोग हुए हैं, इनका जाकर तुम नाश करो, और इस समय में सहस्रार्जुन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसने तुम्हारे पिता का भी नाश किया है, जाओ तुम उस सहस्रार्जुन का वध करो, 21 बार तुम क्षत्रियों का वध करोगे तब जाकर के इन क्षत्रियों का नाश होगा, और सारी भूमि का दान तुम ले जा करके कश्यप जी को दे देना, तब तुम्हारा ये सार वध करने का प्रायश्चित है वो भी समाप्त हो जाएगा। कहा महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो, क्षत्रियों का नाश क्यों चाहते हो? वो इसलिए कचाते हैं कि अभी क्षत्रियों ने बड़ा उत्पात मचाया है, पर एक बात ध्यान रखना कि इसी क्षत्रिय कुल में आगे चलकर अयोध्या के अंदर दशरथ का पुत्र राम प्रसिद्ध होगा, वो राम मैं ही बनकर के आऊंगा, तो उसके बाद तुम्हारा ये सब लड़ना झगड़ना युद्ध करना क्रोध करना क्षत्रियों का श्रृंगार करना सब तुम्हारा बंद हो जाएगा, अभी मैं अपना अंश तुम्हारे अंदर अर्पित करता हूं, मत तेज है पुनराद्यास्य त्वयि दत्तम मया पुरा, और जब मैं रामावतार में आऊंगा ना तब ये मेरा दिया हुआ तेज जो क्षत्रियों के नाश के लिए तुम्हें दे रहा हूं मैं राम रूप से आकर के सारे तेज को वापस अपने अंदर धारण कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी जगह दुष्टों का संहार करूंगा, जाओ उसके बाद फिर तुम तपस्या करते रहना, ये मुझे साक्षात भगवान ने कहा है राम। मैं तो बहुत दिनों से ये समझ रहा था कि राम का अवतार कब हो कब हो, असल में राम मेरे मन में आपके प्रति क्रोध नहीं था, बल्कि मैंने देखा कि आप मेरे पर थोड़ा क्रोध करके और अपना जो तेज मेरे अंदर आपका दिया हुआ है वो तेज आप वापस ले ले, इसलिए मैंने ऐसा किया है। नहीं तो हम ऐसा आपके साथ कठोर बर्ताव कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे बार बार ये कहा है कि देखो परशुराम, दशरथ जी के यहां राम अवतार ले चुके हैं, और देखो परशुराम वो शिव जी का धनुष तोड़ेंगे, उस समय तुम्हारा कोप पूर्वक उनसे मिलना जगत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तब मैं आपके पास आया हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। हे राम, आपकी क्या महिमा कहूं, आप छह प्रकार के भाव विकारों से रहित है। देखो अपने शरीर आदि है ना, ये छह इसमें विकार होते हैं। छह विकार क्या इसमें देखो, एक तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपर्णमते, अपक्षीयते, नश्यति, चय। छह चीजें हैं इसमें खराब, जो विकार को बताने वाली। शरीर है, फिर पैदा होता है, फिर जो है ये बढ़ता है, फिर रूपांतरित होता है, और फिर जो है क्षीण होते होते एकदम नष्ट हो जाता है। जायते अस्ति, पहले तो पैदा होता है, फिर है रूप से दिखता है, फिर बढ़ता है, और फिर विकार को प्राप्त होता है, फिर क्षीण होता है, और फिर नष्ट हो जाता है। ऐसे सब चीजों में होता है, लेकिन त्वयि न संति, तुम्हारे अंदर ये विकार नहीं होते, तुम निर्विकार हो, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हो। जिस प्रकार से जल के अंदर झाग होता है और अग्नि के अंदर धुआं रहता है, ऐसे ही ये संसार के अंदर माया है। ये माया, ये संसार आपके अंदर इसी प्रकार से है। अब बताओ, जल का बुदबुदा होता है, वो जल को छोड़कर है क्या? जल का बुदबुदा जल के बिना हो ही नहीं सकता, और उसका आधार भी जल ही है, और जल ही है वो, बुदबुदा भी जल ही है। इसी प्रकार से इस जगत के परम आधार तुम हो, और तुम्हारे ही कारण से ये जगत जगत दिखता है। जगत के बिना आप हो, लेकिन आपके बिना जगत नहीं हो सकता। लेकिन माया के अंदर मोहित रहने वाले लोग जगत को तो सच्चा मानते हैं, आपकी तरफ बिचारे भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है, भगवान है भी कि नहीं, भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान है तो गौ हत्या क्यों होती है, भगवान सब जगह रहते हैं तो गाय में भी भगवान है, गो हत्या इतना चिल्लाते हो, गाय में देवता रहते हैं, वो 33 करोड़ देवता गए कहाँ? जब वो गाय कटती है, इसको मारा जाता है, तो वो 33 करोड़ देवता कहाँ गए? भगवान को गौ इतनी प्यारी है, तो भगवान गौ में से प्रकट होकर के क्यों ऐसा नहीं कर देते कि मारने वाले को मारे तो गौ बच जाए अपने आप ही? ये क्या है? ये भगवान का लक्षण हम लोग बनाते हैं कि ऐसा भगवान को ऐसे करना चाहिए। अरे ये नहीं कहते हैं, देव भगवान सबके अंदर रह करके काम करते हो, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि सब में भगवान रहते हैं। तो जो भगवान तत्व के रूप में रहते हैं वो सब जगह रहते हैं, पर सब जगह भगवान अवतरित होकर के लीला करते हो ये बात नहीं है। भगवान सब जगह है ये बात हमारे लिए समझने की है, लेकिन भगवान वहां जाकर वैसा करे ये भगवान पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं करते भगवान? कि भाई इस विषय में भगवान चुप रहते हैं, जो लीला करनी होती है वहां भगवान स्वतंत्र शरीर धारण करते हैं, अपनी स्वतंत्र पृष्ठभूमि बनाते हैं, और अपने स्वतंत्र अवतार का कारण चुनते हैं, और चुन करके लीला करते हैं। लेकिन हर जगह साहब सब में भगवान है, फिर अपन भी क्यों मरते हैं? भाई सब में भगवान है तो शरीर क्यों मरता है? अरे गाय के अंदर भगवान है तो तत्व रूप से भगवान है, करने के लिए भगवान थोड़ा ही है वहां, वहां करने के लिए भगवान नहीं है। कुछ काम करे भगवान उसके लिए भगवान गाय में थोड़ा ही है, तत्व में है, तत्व में तात्विक दृष्टि से। जैसे दूध के अंदर घी है तो वो घी मिष्ठान बनाने के लिए नहीं है, घी रोटी चौपड़ने के लिए नहीं है, तत्व रूप से घी है वहां, लेकिन घी का उपयोग करना चाहोगे दूध के द्वारा तो नहीं होगा, दूध को जमाना ही पड़ेगा, दही निकालना ही पड़ेगा, दही से घी निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद ही उसमें से आप घी बना करके उपयोग कर सकते हो। तो जैसे दूध का घी है वो काम लेने के लायक नहीं होता, ऐसे ही गौ के अंदर रहने वाले भगवान वो वहां काम करने के लिए, लीला करने के लिए नहीं है, वो तत्व हमारे समझने के लिए है। तो अविचारिते ऐसा बुद्धि, मूर्खों की ये बुद्धि होती है कि भगवान यदि सब जगह तो ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे हम लोग हमारे शरीरों में अभिमान करके और कुछ करने का अभिमान रखते हैं कि मैं शरीर हूं ऐसा मानकर कर्म करते हैं, ऐसे ही हमने भगवान पर भी आरोप कर लिया। दे अविद्याकृत देहादि संघाते प्रतिबिंबिता चित शक्तिर जीव लोकेस्मिन जीव इत्यभिधीयते। भगवान में और जीव में यही तो अंतर है कि जीव शरीर का अभिमान करता है कि ये मैं शरीर हूं, और उस अभिमान के बाद वो कर्म करता है, ये कर्म मैं करूंगा, ये मैं बचाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा। भगवान ऐसे नहीं होते, ऐसा करने वाला जीव होता है। और जो जीव करने का अभिमान रखता है तो उसको भोगना भी पड़ता है, जहां कर्तृत्व है वहां भोक्तृत्व है, जो करेगा करना स्वीकार करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, जो करना स्वीकार करेगा भोगना पड़ेगा। किसी का थैला रखा है, उस थैले के अंदर विस्फोटक पदार्थ है, कहीं देखा यार अपन ले चलो, लेके रवाना हुआ, अब वो विस्फोटक पदार्थ फूटने लगे, रही क्या हुआ इसमें, बम कैसे निकला, पकड़ लिया उसको, बम कैसे हुई मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो लोगों का थैला उठा लिया। तो भाई चलो दंड मिलेगा, तुमने क्यों उठाया, तुमने ये थैला उठाया, तुम्हारा सामान नहीं, तुम्हारा कोई लेना नहीं देना नहीं, क्यों उठाया तुम दंड भोगो, भोगना पड़ेगा। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व जिसमें होता है वहां कर्म का अहंकार इसका मूल कारण होता है। इसलिए आप सब जगह व्यापक रहते हैं, ऐसा नहीं कि व्यापक रहते हुए कुछ करने भी लगेंगे, करना होगा अहंकार के अंदर। आत्मनः संस्कृतिर नास्तिर बुद्धिर ज्ञानम न जात्वती, माने आत्मा के अंदर तो संसार नहीं है और बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान बुद्धि में दिखता है और बुद्धि का जो जड़त्व है वो आत्मा में आता है, ये दोनों आपस में मिल गए। अविवेका द्वयम् युंक्त्वा, इसलिए संसारी इति प्रवर्तते। तब मनुष्य के मन में आता है कि मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं साधु हूं, मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, शरीर के साथ आत्मा का मेल हो गया। अब आत्मा ने तो अपने आप को तो भुला दिया और दूसरे को पकड़ लिया, आत्मा का धर्म तो चला गया उसमें और जो है संसार का धर्म आ गया आत्मा में, कि साहब आत्मा है कि नहीं है कि कुछ पता नहीं है, ये सब बातें होने लग गई। जड़स्य चित समायोगात, जड़ का चित के साथ योग हो गया, और चित्तम भूया चितेस तथा, और जो है ये चेतनता, उसमें चेतनता दिखने लग गई और आत्मा के अंदर जड़त्व आ गया। जड़ संगा जड़त्वम ही जलाग्निर मेलनम यथा, जैसे जल और अग्नि का मेल हुआ कि पानी से जल गया, साहब पानी गर्म हो रहा था तो पानी से जल गया, पानी से कैसे जल गया, अभी पानी तो ठंडा होता है, अरे ठंडा नहीं, पानी गर्म था, तो गर्म गर्म का स्वभाव अग्नि में, और अग्नि और पानी दोनों मिल गए तो उसमें उष्णता आ गई। अब अग्नि में शांतता और जल के अंदर उष्णता, इन दोनों का मेल हो गया तो गड़बड़ हो गया। ऐसे ही आत्मा का और शरीर का ये मेल हो गया, इस कारण से संसार में कष्ट पैदा हो गया। अब ये दूर कैसे हो, ये आपके चरणों की भक्ति करने से, संग सौख्यम, आपके भक्ति का जो आनंद मिलता है उसका जो संग सौख्य होता है उससे ये जड़ चेतन का संबंध नष्ट होता है। तदा माया शनैरी आती, फिर ये माया धीरे धीरे अपने आप छूट जाती है, आपका भजन करने से ये माया छूट जाती है। इसलिए आपके जो भक्ति नहीं की जाए तो फिर वो चाहे कल्प कोटि शतई रपि, सैकड़ों कल्पों तक वो संसार में घूमता रहे, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसको ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे श्रेष्ठ पुरुष के पास बैठकर आत्मा का और शरीर के अलगाव का ज्ञान करता रहे और आपके भजन के अंदर लगा रहे। ये भजन क्या है सज्जनों, कि जैसे करोती चलती है यूं, तो अब करोती यूं चलती है, कितना ही बड़ा मजबूत कोई ठूंठ हो, करोती चलेगी तो वो ठूंठ कट जाएगा। ऐसे ही भगवान का यूं भजन करते हैं, राम 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 भजन करते हैं, उस भजन से हमारी जन्म जन्मांतर की जो पाप राशि होती है वो पाप राशि कटती रहती है। इसलिए भगवान के भजन के लिए परशुराम जी बोलते हैं कि मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं कि आपके चरण युगलों में, दोनों चरणों में मेरी जन्म जन्मांतर तक भक्ति बनी रहे, और बार बार मेरा जन्म भी हो संसार में तो भक्तों के बीच में मेरा बैठना रहे, क्योंकि भक्त और भक्ति इनके बीच में रहने से अविद्या नष्ट हो जाती है। देखो एक तरफ तो ये भी लाइट आ रही है, एक तरफ इधर से भी लाइट आएगी तो हमारी परछाई कहीं पड़ेगी नहीं। इसलिए कई जगह तो रात्रि के अंदर भी जो है खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और भी कई खेल खेलते हैं, वहां ऐसा बनाया हुआ लाइटों का ऐसा प्रभाव रहता है कि कोई वहां पर जो है छाया नहीं पड़ती। रात्रि में भी जैसे दिन में लाइट रहती है, खेलते हैं ऐसे, क्रिकेट खेलते रहते हैं, छाया नहीं पड़ती। क्यों नहीं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और उधर भी, चारों तरफ प्रकाश रहता है, छाया पड़ेगी कहां? छाया तो जहां प्रकाश नहीं होगा उधर पड़ेगी, इधर तो लाइट है, इधर लाइट नहीं है तो ये छाया इधर पड़ेगी, इधर तो पड़ नहीं सकती क्योंकि लाइट है। ऐसे ही भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, इन दोनों का सानिध्य हमें मिलता है, इनके बीच में हम रहते हैं तो फिर अविद्या की छाया नहीं पड़ सकती। अविद्या याभ्याम विनश्यति। इसलिए महाराज लोके स्वद भक्ति निरता, जो आपकी भक्ति के अंदर डूबे हुए हैं और वे लोग सदा ही भक्ति की वर्षा करते रहते हैं, उससे लोगों के अंदर पवित्रता छाती रहती है। हे भगवान आप बड़े दयालु हैं, हे रामचंद्र मेरी आपके चरणों में भक्ति रहे। आपने कहा कि ये बाण कहाँ चलाऊं, तो आप इस बाण को जो जो आज तक मैंने पुण्याति पुण्य लोक कमाए उन सब लोगों को आप खत्म कर दीजिए। मुझे वो कर्मों के फल से मिलने वाले ऊंचे लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग मिलेगा कि सत्य लोक मिलेगा, जन लोक मिलेगा, तपोलोक में, ये मुझे नहीं चाहिए। बस मैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं। भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान ने कहा कि परशुराम जी आप तो सदा मेरे हृदय में विराजमान हैं। दास्ये तद अखिलम कामम मां कुरुष्वात्र संशयम। आपने बड़े बड़े पुण्य कर्म करने से जिन लोगों को प्राप्त किया था उनको सुरक्षित रखता हुआ आपके अंदर में भक्ति का संचार करता हूं। बड़े प्रेम से राम जी महाराज ने अपना बाण अपने में समेट लिया और परशुराम जी महाराज भगवान से कहने लगे, हे मधुसूदन, कैसी आपकी मेरे पर कृपा हुई है। बस भक्तों का और भक्ति का संग चाहिए। मैंने जो आपके सामने स्तुति पठन किया है वो भक्तिहीन पुरुष भी इस स्तुति को गाएगा तो उसके अंदर भी भक्ति पैदा हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान की परिक्रमा करके महेंद्र पर्वत पर जाकर वे तपस्या करने लग गए। इधर राम जी महाराज ने अपने पुत्र राम को दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को छाती से लगाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, आज तो तुमने हमको बड़ी भारी आफत से बचा दिया। अब दशरथ जी महाराज के इतने प्रेम है, देखो आंखों से आंसू आए। अभी भी दशरथ जी का देखो, दशरथ जी का प्रेम ऐसा है कि दशरथ जी राम जी का प्रभाव नहीं देखते हैं। राम जी का प्रभाव देखना, भगवान को भगवान समझना, ये प्रेमी लोगों को आता ही नहीं। प्रेमी लोगों को तो भगवान अपने मालूम देते हैं, ये हमारा अपना है अपना। देखो छोटा बच्चा होता है वो माँ का प्रभाव जानता है क्या? छोटा बच्चा माँ का प्रभाव नहीं जानता, लेकिन माँ को जानता है कि माँ मेरी है, बस ये मेरी है। मैंने इसके यहां जन्म लिया है, मैंने इसका दूध पिया है, मैं इसका दूध पीता हूं, इतना ज्ञान बच्चे में है ही नहीं। बच्चा तो केवल मेरी माँ है। उस मेरी माँ के अंदर जो माँ को आनंद आता है, उस बच्चे को देख करके जो माँ को माँ जानते हैं कि क्यों माँ है, उनके प्रति इतना स्नेह नहीं होता कि भाई मैं इसके पेट में रहा हूं, मैंने दूध पिया है, माँ ने मेरे सेवा की है, मैं माँ का ऋण कैसे उतार सकता हूं। ये जिस अवस्था में बालक समझता है, उस अवस्था में मां का इतना प्रेम नहीं होता और वो कुछ भी नहीं समझता बच्चा। उस अवस्था में मां का बच्चे में बहुत प्रेम होता है। ऐसे ही सज्जनों, हमारा भगवान को भगवान मान करके प्रेम नहीं, भगवान के साथ तो अपना मान करके जो प्रेम होता है वो प्रेम प्रेम होता है। उसको भगवान कभी भूलते नहीं है। भगवान मेरे हैं तो मेरेपन से जो भगवान को आनंद आता है। दशरथ जी महाराज को राम मेरा बेटा है बस इतना ही दिखते हैं। परशुराम जी भी जैसे देखे इनके सामने कैसे हो गए, कैसे धनुष को तोड़ा, कैसी कैसी महिमा सुनकर के आए, देख रहे हैं, फिर भी दशरथ जी तो मेरा बेटा है इतना ही मानते हैं। इसलिए अयोध्या के अंदर जब दशरथ जी महाराज चले गए थे, तब भगवान ने देखा कि अयोध्या में मेरा प्रेमी अब कोई नहीं रहा। कौशल्या माँ है, ये तो ज्ञानी है, ज्ञानी। कौशल्या माँ प्रेमी नहीं है, ज्ञानी है। वहां ज्ञान की आवश्यकता थी। दशरथ जी महाराज प्रेमी है, इसलिए राम का वियोग बिल्कुल सह नहीं सके। अब यदि राम जी महाराज को आत्मा रूप से जानते तो दशरथ जी मरते थोड़ा ही, लेकिन दशरथ जी का मरना कितना विलक्षण हुआ, कितना श्रेष्ठ काम हुआ भक्ति की दृष्टि से। तो दशरथ जी महाराज जान रहे हैं, सामने परशुराम जी कह रहे हैं, ऐसी स्तुति कर रहे हैं, तब भी हमारे दशरथ जी पर तो कुछ भी असर नहीं पड़ा और वे राम जी को अपने छाती से लगा ली, बेटा तू परशुराम जी के प्रकोप से बच गया, बड़ी बड़ी कोई भगवान की मेहरबानी हो गई। बड़े प्रेम से सब अयोध्या लौट आए, अयोध्या में रहने लगे। अयोध्या तो सब वहां जब से सीता जी आई सब रहने लगे, तो अयोध्या बैकुंठ के समान भगवान को लगने लगी। अब एक दिन युधाजित जी आए, युधाजित आए दशरथ जी से कहने लगे कि दशरथ जी महाराज, हम थोड़ा भरत जी को दनिहाल ले जाते हैं कि ले जाओ। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों के दोनों दनिहाल भेज दिए गए। कौशल्या जी और ये सब माताएं वहां पर बड़े प्रेम से रहने लगी। ये जो अयोध्यापुरी है, क्या बताएं, इतनी पवित्र है कि जहाँ सीता जी के साथ राम जी अपने भाइयों के बीच में बड़े स्नेह से माता पिता को आनंदित करते हुए रहते हैं, और सीता जी भी भाई जहाँ जहाँ विराजमान है वो सीता जी भी राम जी के आदेश के अनुसार उनके भाव के अनुसार कार्य करने वाले हैं, ऐसे राम जी महाराज यहाँ विराजमान है। एक दिन की बात है, राम जी अपने महल में बैठे हुए थे, तो उस समय राम जी महाराज अपने महल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए, क्या राम जी की बड़ी विचित्र शोभा थी, कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर झगमगाती थी। देखो ये कल हमने बताया ना कि भगवान की वनमाला है, भगवान की कौस्तुभ मणि है, भगवान के आयुध है, ये जब भगवान चाहे तब तो वो प्रकट करके दिखा दे, नहीं है तो अपने अंदर लीन भी रखते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। तो वहां पर कौस्तुभ मुक्त कंधरम, कौस्तुभा मुक्त मंदरम, माने कौस्तुभ मणि उनके यहां पर जगमग कर रही थी, अलग रखी हुई नहीं, रख लिया और कभी पहन लिया, रख लिया और कभी पहन लिया, ये तो सब भगवान के दिव्य आयुध, दिव्य सौंदर्य भगवान के अंदर छिपता है प्रकट होता है, छिपता है प्रकट होता है। बैठे हुए थे भगवान, बहुत प्रसन्न थे भगवान, स्वाभाविक ही ये आयुध ये माला और ये सब प्रकट हुए हुए थे एकांत में विराजमान। उसी समय में आकाश मार्ग से नारद जी महाराज भगवान के कक्ष में आए, भगवान ने बड़ा आदर किया, आइए नारद जी महाराज, आइए आइए, हमारे जैसे संसारी लोगों को आप जैसे त्यागी महात्मा के दर्शन हो गए, निहाल हो गए महाराज, निहाल हो गए हम। कौन बोल रहे हैं? राम जी। किनके लिए? नारद जी के लिए, कि हमारे जैसे संसारी पुरुष आप जैसे त्यागी महापुरुषों के दर्शनों से निहाल हो गए। हम तो हरदम विषयों में डूबे रहते हैं ना, इस कारण से कभी कभी हम जो है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके कभी कभी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी कृपा की आप। बोलिए महाराज, कैसे आए, किम कार्यम, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, बोलिए, आज्ञा दीजिए मुझे। नारद जी देख रहे हैं, देखो बस मैं तो इनके पास क्या समझ गए, क्या मेरी स्तुति कर रहे हैं। नारद जी कहे, वाह प्रभु वाह, क्या बोल रहे हैं आज, आप कोई सभा में थोड़े ही बैठे हैं, आप एकांत में मेरे से बात कर रहे हैं महाराज, मैं आपको पहचानता नहीं क्या कि आप कौन है। नारद जी खूब विचार करके, हाँ हो आप तो मुझे मोहित करने के लिए अपनी वाणी बोल रहे हैं। देखो महाराज, आपने कहा कि मैं संसारी हूं, संसारी का अर्थ क्या होता है कि जो संसार में लगा रहता है वो, ना ना ना, संसारी का अर्थ यह है कि संसार है अस्य अस्तीति संसारी, ये संसार जिसका है वो संसारी, तो आप संसारी हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संसार आपका है। देखो धनी कह रहे, ये आदमी धनी है, धनी धनी माने कि इसके पास धन है इसलिए धनी है, धनम अस्य अस्ति इति धनी, तो जिसके पास धन है तो ये संसार आप ही के तो अधीन है, इसलिए आप संसारी हैं, ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है। संसारी अहम इति यत प्रोक्तम सत्यम एतत्त्वया प्रभो, आपने बिल्कुल ठीक कहा है प्रभु, और आपने ये भी कहा कि देखो साहब ये जो माया है ये, और ये जो हमारे, हम तो गृहस्थी है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये माया है, ये आपकी गृहिणी है, आपके घर के अंदर रहने वाली, आपकी घर का सब काम करने वाली, संसार को पैदा करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संसार का संहार करने वाली आपकी माया ही तो है ये, ये माया है, आपकी गृहिणी है और आपके आदेश से सब काम करती है। ब्रह्मा जी को भी पैदा किया, ब्रह्मा जी ने सारे जगत को पैदा किया, आपने तो केवल माया को आदेश दे दिया। देखो बड़े से बड़ा सेठ होता है वो अपने मुनीम को आज्ञा दे देता है कि मुनीम जी ये काम ऐसा होना चाहिए। मुनीम जी कहते हैं ठीक है, वो मुनीम थोड़ी खुद थोड़ा ही करता है, मुनीम अपने नीचे रहने वालों को आदेश देता है कि जाओ भाई ऐसा ऐसा काम तुमको ये सब करना है, सेठ का आदेश है ये काम करना है। तो मुनीम अपने अधीनस्थ जो आदमी होता है उसके वो जाकर के उसको ऐसे करके तीन चार जगह आदेश जाते जाते मजदूर तक आदेश जाता है, वो आदमी नीचे वाला मजदूरों से काम करवाता है। ऐसे ही आप भी महाराज अपनी माया को आदेश देते रहेंगे कि माए संसार का पालन करो। अब कैसे करना है क्या करना है ये माया के अधीन रहने वाले देवता, माया के अधीन रहने वाले ब्रह्मा, माया के अधीन रहने वाले और चीजें, वो सब अपने आप काम करने लग जाती है। वही बड़े सेठ का हुक्म हुआ है। ऐसे संसार आपके अंदर समाया हुआ है।